दिन भर तारीख 5 अप्रैल दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अभिनेता सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की जेल, जोधपुर की एक कोर्ट ने सुनाई सजा।
9/51 में दोषी फरार मानते हुए 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रूपए जुर्माने से आरोपित किया गया।
खास रिपोर्ट, कर्नाटक के भटकल के लोग आखिर क्यों बदलना चाहते हैं अपनी पहचान।
भटकल के नाम के साथ जो टेररिज्म का टैग लगाया गया है, यहाँ से ट्रैवल करके बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि लोग शक की निगाह से देखते हैं।
और कॉमनवेल्थ खेलों के पहले दिन भारत की झोली में 2 पदक, मीराबाई चानू ने नए रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड।
गोल्ड मेडल भी लिया और मेरा खुद के रिकॉर्ड भी मैंने खुद तोड़ दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ।
होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। जोधपुर की अदालत ने 2 चिंकारा का शिकार करने के मामले में सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। शिकार की यह घटना 26 सितंबर 1998 की है। सलमान खान के साथ फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत का भी इस मामले में नाम शामिल है, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिम में एक विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए सभी लोग एस्की शहर की ओस्मान गाजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे। बताया जा रहा है कि हमला यूनिवर्सिटी के ही एक रिसर्च असिस्टेंट ने किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रूस ने एक बार फिर ब्रिटेन के उस आरोप का खंडन किया है, जिसमें पूर्व रूसी जासूस और उसकी बेटी पर नर्व एजेंट से हुए हमले के लिए मॉस्को को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ब्रिटेन के दावे परिकथाओं जैसे हैं और इन्हें रूस को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्क्रिपल केस एक काल्पनिक और गढ़ा हुआ मामला है और इसके आधार पर बड़े स्तर पर अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि कई देशों से रूस के राजदूतों को निकाल दिया गया और बहुत से मामलों में उन देशों के पास और कोई विकल्प भी नहीं था। हमने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, कूटनीतिक आदर्शों और मर्यादा की खिल्ली उड़ाने का ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा। ये थे रूस के विदेश मंत्री के शब्द। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजे जाने की दिशा में कोई प्रगति न होने पर हताशा जताई है। उन्होंने कहा कि नवंबर में द्विपक्षीय समझौते पर दस्तखत होने के बावजूद कुछ होता दिख नहीं रहा और अब उनका देश शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अगस्त में हालात खराब होने के बाद से लेकर अब तक 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या म्यांमार छोड़ चुके हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आर्थिक सलाहकार ने चीनी सामान पर नए आयात शुल्क लगाने के सुझावों के बारे में जानकारी दी है। लैरी कडलॉ ने कहा कि राष्ट्रपति सभी उपलब्ध तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मोलभाव किया जा सके। चीन ने भी इसके जवाब में अमरीकी सामान पर आयात शुल्क लगाया है। वाशिंगटन में चीन के राजदूत क्यूई तियांगकाई ने कहा कि चीन आपसी बातचीत से विवाद को सुलझा सकता है, लेकिन पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये रिश्ता काफ़ी वृहद और थोड़ा पेचीदा भी है। इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बहुत अच्छी भी नहीं, लेकिन अब तक हम अच्छी चीज़ों का विस्तार करते रहे हैं और जो अच्छी नहीं है उनसे निपटते भी आए हैं, लेकिन ऐसा साथ मिलकर ही होगा। पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप सुन रहे थे वाशिंगटन में चीन के राजदूत के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल के रक्षा मंत्री एविगडर लाइबरमैन ने कहा है कि सैनिकों को दिए गए आदेश वापस नहीं लिए जाएंगे। इन सैनिकों की गोली से पिछले शुक्रवार को गजा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे 17 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। लाइबरमैन ने कहा कि अगर इसराइली सैनिकों को उकसाया गया तो वे उसी भाषा में जवाब देंगे। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि लेफ्ट विंग से संबंध रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को भ्रष्टाचार के मामले में मिली 12 साल की सजा भुगतनी ही होगी। इस फैसले पर वर्कर्स पार्टी ने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उनकी आलोचकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अदालत के इस आदेश से लुला के अक्टूबर में होने जा रहे चुनावों में भाग लेने की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। स्पेन के हाईकोर्ट से अभियोजनकर्ताओं ने मांग की है कि टैक्स चोरी का खुलासा करने वाले पूर्व बैंक कर्मचारी को अपने संरक्षण में लिया जाए। हर्वी फेल्सिनी को बुधवार को मैड्रिड में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें स्विट्जरलैंड को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। 2008 में उन्होंने स्विस बैंक और HSBC से 1,83,000 लोगों और कंपनियों की लिस्ट ली थी और उसे फ्रांसीसी प्रशासन को सौंप दिया था। इसके बाद कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चला था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
गोल्ड मेडल भी लिया और मेरा खुद के रिकॉर्ड भी मैंने खुद तोड़ दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ।
कंट्री के लिए मेडल लूंगा करके मैं स्टेज में गया, फिर सिल्वर लिया।
सबसे चुनौती भरा होता है उम्मीदों का बोझ उठाना, और अगर ये भार 125 अरब लोगों की उम्मीदों का हो तो उस पर खरा उतरने की खुशी गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू और चैंपियन वेटलिफ्टर पी गुरु राजा की आवाज में साफ महसूस की जा सकती है। मीराबाई और गुरु राजा ने कॉमनवेल्थ खेलों में जो कमाल किया उस पर हम आगे बात करेंगे। दिन भर की शुरुआत जोधपुर की एक कोर्ट के उस फैसले की खबर से जिस पर तमाम लोगों की निगाहें और उम्मीदें टिकी थीं। केस 20 साल पहले हुए काले हिरणों के शिकार का था और आरोपों के घेरे में थे अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान के साथ 3 अभिनेत्रियां। कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ सलमान को दोषी ठहराया। 5 साल की सजा के साथ उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सुनिए नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया। उस वक्त उनकी 2 बहनें अर्पिता और अलवीरा वहां मौजूद थी। इसके बाद सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जोधपुर जेल को देश की सुरक्षित जेलों में शुमार किया जाता है। वहां आशाराम बापू भी लंबे समय से जेल में है। सलमान खान पहले भी इस जेल में रह चुके हैं। सलमान खान पर 1998 में जोधपुर के निकट एक गांव में 2 काले हिरणों के शिकार के आरोप थे। उनके साथ सैफ अली, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्री पर भी आरोप थे, मगर इस्तगासा इन अभिनेताओं के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया। ये फिल्म स्टार उस वक्त एक हिंदी फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे। इससे पहले सितारे जब अदालत में दाखिल हुए तो वहाँ भारी भीड़ जमा थी। अदालत ने जब फैसला सुनाया तो सलमान खान मायूस नजर आए, जबकि सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे ने बरी होने पर राहत की सांस ली। अदालत के निर्णय के बारे में विश्नोई समाज के वकील महिपाल विश्नोई ने मीडिया को जानकारी दी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार जी खत्री के द्वारा 9/51 में दोषी करार मानते हुए 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है। न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, उनमें विश्वास था हमें, और उसके तहत ही ये जो निर्णय दिया गया है उनका पूर्ण रूप से हम आदर करते हैं, और ये निश्चित तौर मान रहे थे, हमें इस तरह की पूर्ण उम्मीद थी कि इस तरह से फैसला आएगा।
फैसले से जहां सलमान के समर्थक मायूस हो गए, वहीं विश्नोई समाज ने खुशी का इजहार किया है।
माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, हम लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। ये स्वागत योग्य फैसला है, और जिन लोगों को आरोप मुक्त किया है उसको लेकर के हम फैसला आने के बाद समीक्षा करेंगे।
सलमान खान के वकीलों ने फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है और जमानत के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इससे पहले शिकार के 2 मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं। मुकदमे की ये कार्रवाई बहुत लंबी चली, इसमें किसी मुंबई फिल्म की तरह कई मोड़ आए। अदालत में फिल्मी सितारे साथ साथ आए, लेकिन फैसले के वक्त सलमान खान अकेले रह गए क्योंकि बाकी सबको बरी कर दिया गया था। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
मौजूदा दौर में सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक है। उनकी कई फिल्में फ्लोर पर हैं और उन फिल्मों पर करोड़ों रुपए दांव पर लगे हुए हैं। सलमान को सजा के ऐलान के बाद बॉलीवुड ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, बताने के लिए मौजूद हैं राखी शर्मा। जी राखी
जी, देखिए जहाँ तक सलमान खान की सजा का सवाल है तो इसके बाद बॉलीवुड उनके समर्थन में दिख रहा है। बॉलीवुड से जुड़े लोग कोर्ट के फैसले पर सीधे तौर पर भले ही कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो सलमान के लिए समर्थन जाहिर जरूर कर रहे हैं। सुभाष गई जैसे लोग उनकी सजा पर हैरानी जता रहे हैं। वहीं पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी सलमान के पक्ष में ट्वीट किया है। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर उनके फैंस जुटे हुए थे। उनका क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं।
और सलमान खान अच्छे हैं और उसको सजा मत चाहिए, उसका बच्चा भी अच्छा प्यार करता है और फिल्म भी उसकी अच्छी होती है, इसीलिए उसको सजा मत चाहिए। हाँ, माफी देना चाहिए सलमान खान को।
आपको लगता है उन्हें बेल मिलेगी?
मिल जाएगी,
मिल जाएगी, प्रार्थना करेंगे मिल जाएंगे।
हमें जैसे पता चला कि सलमान भाई के तरफ विरुद्ध केस उठाया गया है तो हम तुरंत वहाँ से चले आए। आम आदमी भी कुत्ते को मारते, बकरी को मारते, तभी तो केस नहीं करते।
ये कहना है कि सलमान खान ने गलती करी, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए आदमी को। बाकी और भी लोग ऐसे कांड हो रहे हैं, जैसे 1100 करोड़ लेके भाग रहे हैं, 1200 करोड़, उनके ऊपर कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
ये थे सलमान खान के फैंस। अगर सलमान की पर बन रही फिल्मों की बात करें तो इसमें दबंग 3 और रेस 3 अहम फिल्में हैं। इन फिल्मों पर करीब 400 करोड़ रुपए लगे हुए हैं,
यानी बहुत कुछ दांव पर है। बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा। अभी हमने सलमान के फैंस की बात सुनी, लेकिन अगर काले हिरण शिकार के मामले में सजा के ऐलान के बाद विश्नोई समाज की प्रतिक्रिया की बात करें तो विश्नोई समाज काफ़ी खुश नजर आता है। इस मामले में उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। फैसला आने के बाद मैंने जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत विश्नोई से बात की तो उन्होंने वन और जीव संरक्षण को लेकर विश्नोई समाज के योगदान का जिक्र किया। आप भी सुनिए।
अगर आप हमारा इतिहास देखें तो हमने अपना जीवन पेड़ों के लिए और हिरणों के लिए बहुत बार दिया है। सन 1730 में खेजड़ली में 330 लोग, जिसमें 262 पुरुष और 111 महिलाएं, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी पेड़ों के लिए खेजड़ली में। उस समय एक अनपढ़ महिला थी अमरता देवी विष्णु, उसने ये कहा था कि सर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान, सर कट जाए और पेड़ बच जाए तो भी सस्ता सोचा समझो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो हमको संदेश दिया, जो हमको उपदेश दिया, उसमें लिखा है कि जीव दया पालनी, जीवों पर दया करो, जीव दया पालनी, रूख लीलो निगावे और हरे पेड़ मत काटो।
विश्नोई समाज के नियम है 29 नियमों का खास तौर पर जिक्र होता है। इन नियमों के बीच क्या अहमियत है, ये जो ब्लैक बक काला हिरण जिसे कहा जाता है?
हमारे लिए वाइल्ड लाइफ का प्रत्येक प्राणी हमारे लिए बराबर सम्मान्य है। काला हिरण है चाहे दूसरा हिरण है, चाहे मोर है, चाहे तीतर है, हम किसी को भी जीव हत्या के पक्ष में नहीं, किसी भी जीव हत्या के पक्ष में नहीं।
20 साल जब कोई मामला चलता है उस दौरान क्या कुछ अनुभव रहा, भावनाओं के किस दौर से पूरा समाज गुजरता रहा और ये लड़ाई कितनी मुश्किल थी?
देखिए, इस घटना से नहीं है, कहीं भी कोई घटना होती है तो विश्वनाथ समाज पूरा अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, पूरे समाज के कुछ लोग उसमें लग जाते हैं, परमा हमारी कई संस्थाएं उसमें लगी रहती है उसकी पैरवी करने के लिए। जैसे अभी हमारे वो शहीद हुआ 2 साल पहले चेतन सिंह बिश्नोई जाम्बा गांव में हिरण के लिए, तो उसके लिए समाज आर्थिक मदद करता है, फिर उस केस को जो 302 का केस था उसके लिए पैरवी करता है। मैं कह सकता हूँ कि एकमात्र ऐसा समाज है जो बिना पैसे के सरकार की तरफ से वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता है, कोर्ट में काम करता है और जंगल में काम करता है।
मैं आपसे खास तौर पर इस केस के बारे में जानना चाहूंगा।
इस केस में भी बराबर हमारे समाज के वकीलों ने पैरवी की है, समाज के लोग बराबर पांव पर खड़े रहे हैं, लोगों को तरह तरह के लालच भी दिए होंगे, लेकिन वो कभी भी हमारा समाज ऐसे प्रलोभन में नहीं पड़ता। हमेशा समाज उसका अपने सबसे महत्वपूर्ण उसको मानता है कि जो अपराध हुआ उसकी उसके सजा मिले।
तो ये जो फैसला आया है आपको क्या लगता है, ये नजीर बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा?
बिल्कुल बनेगा और लोगों को इस बात का संदेश जाएगा कि हम जो काम जो शिकार कर रहे हैं ये ठीक नहीं। देखिए, आप शिकार आजादी से पहले भी होते थे, राजा महाराजा समय होते थे, लेकिन ऐसे नहीं होते थे कि सात सात हिरण साथ मारे जा रहे हैं, 10-10 हिरण साथ मारे जा रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कुछ लोगों ने इसको प्रोफेशन बना दिया है, वाइल्ड लाइफ खत्म करने का और होटलों में सप्लाई करने का।
अब आगे का आप क्या देख रहे हैं?
जो संदेह का लाभ लेकर के भरी हुए हैं उनके खिलाफ में अपील की जाएगी सरकार की तरफ से। हम कोशिश करेंगे सरकार अपील करे और समाज भी अब उसमें पैरवी करेगा।
ये थे पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई। और अब बात ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों की। कॉमनवेल्थ खेलों के पहले दिन भारत की झोली में 2 पदक आए। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड और गुरु राजा ने सिल्वर मेडल जीता। बीबीसी संवाददाता रेहान फजल इन दोनों की कामयाबी के गवाह बने। मैंने अब से कुछ देर पहले रेहान साहब से बात की और उस वक्त का आंखों देखा हाल बयान करने को कहा।
बहुत ही गजब का दिन था वात्सल्य, हम लोग सुबह ही वहां पहुंच गए थे। मीराबाई चानू ने 196 किलो वजन उठाकर न सिर्फ भारत के लिए 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता बल्कि नया कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और उनके डोमिनेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दूसरे नंबर पर जो मॉरिशस की वेट लिफ्टर थी उन्होंने उनसे पूरे 27 किलो वजन कम उठाया। उन्होंने जब वो आई अपना फाइनल वजन उठाने तो पहले अपने हाथ की नमी को उन्होंने साफ किया पाउडर से, फिर उन्होंने धरती को चूमा, दर्शकों का अभिवादन किया, आगे बढ़ी, फिर बार को उन्होंने माथे से लगाया और फिर को बिल्कुल बिना किसी शिकन के उन्होंने वजन उठा लिया। बहुत ही एक तो दुबली पतली हैं, इतनी गठीली नहीं हैं, उनको देखकर नहीं लगता कि वो इतना बड़ा वजन उठा सकती हैं। और जब भारत का राष्ट्रगान बज रहा था तो मैं देख रहा था उनकी आंखें भर आई थी, वो गा भी रही थी राष्ट्रगान और बाद में मेरी उनसे बातचीत हुई, बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा कि उनके मन में था कि रियो ओलंपिक में वो अच्छा नहीं कर पाईं और उनको मौका मिलना चाहिए, वो अच्छा कर सकती हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने ठाना हुआ था कि मैं सिद्ध करूंगी कि मुझ में अच्छा करने की क्षमता है। उन्होंने ये इस जीत को डेडिकेट किया विजय शर्मा जो उनके कोच हैं, अपने परिवार वालों को और मणिपुर में रहने वाले लोगों को। जाहिर है कि वो बहुत खुश थीं।
मेरा सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स है, फर्स्ट टाइम में मैं सिल्वर लिया था, तो इस बार भी गोल्ड मेडल भी लिया और मेरा खुद के रिकॉर्ड भी मैंने खुद तोड़ दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ।
उधर पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में गुरु राजा ने चांदी का पदक जीता है। उन्होंने कुल 249 किलो वजन उठाया। मलेशिया का वेटलिफ्टर इजहार अहमद उनसे कहीं बेहतर था, उसने 265 किलो वजन उठाया। और बाद में हमने गुरु राजा से भी बात की।
मेरा कोच और मेरा ट्रेनर बहुत इसमें हुआ था, टेंशन में। मेरे को कन्फर्म था मैं करूँगा, लेकिन वो सेकेंड लिफ्ट कैसे पता नहीं नो लिफ्ट दिया। थर्ड वाला मुझे थोड़ा डर भी था, लेकिन मुझे एक ही आता मैं कंट्री के लिए मेडल लूँगा करके मैं स्टेज में गया, फिर सिल्वर लिया, बहुत खुश हो गया मुझे।
जी, ये तो थे गुरु राजा। दूसरे खेलों में पहले दिन भारत की खिलाड़ियों की क्या स्थिति रही, कैसा उनका प्रदर्शन रहा?
देखिए, महिला हॉकी में बहुत ही एक तरह से निराशाजनक रिजल्ट आया जब वेल्स ने भारत को 3-2 से हरा दिया। भारत क्या इस समय दुनिया में रैंकिंग 10वीं है, वेल्स की कहीं नीचे 26वीं, और उसने भारत को हराया। 2-0 की लीड वेल्स ने ले ली थी, फिर भारत ने 2-2 से बराबरी की, लेकिन चौथे क्वार्टर में उन्होंने विजयी गोल दाग दिया 3-2 से। तो एक तरह से ये अपसेट हार थी, लेकिन बैडमिंटन की मिक्स स्पर्धा में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हरा दिया है और टेबल टेनिस के शुरुआती मुकाबलों में भी उनकी जीत हुई है।
जानकारी दे रहे थे रेहान फजल।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज के साथ ही मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
और अब एक खास रिपोर्ट। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तटवर्ती इलाके में बसा है भटकल शहर, जिसे इंडियन मुजाहिदीन नाम के चरमपंथी संगठन की जन्मस्थली भी कहा जाता है। यहां से गिरफ्तार चरमपंथी यासीन भटकल की वजह से इस इलाके की काफी बदनामी हुई, लेकिन यहां सांप्रदायिक माहौल की बात करें तो वो हमेशा से ही अच्छा रहा है। यहां के रहने वाले हिंदू और मुसलमान अब इस बदनामी से छुटकारा पाना चाहते हैं। भटकल से सलमान रावी की रिपोर्ट।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह।
यह अजान की आवाज को अरब सागर की तेज हवा पूरे फिजा में फैला रही है। यह है पश्चिमी घाट पर स्थित कर्नाटक का भटकल कस्बा। इस कस्बे को चरमपंथ की फैक्ट्री भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन नाम के चरमपंथी संगठन के जन्मदाता के रूप में जाने जाने वाले यासीन भटकल यहीं से ताल्लुक रखते हैं। इंडियन मुजाहिदीन पर देश के विभिन्न हिस्सों में धमाके करने का आरोप है। भटकल कस्बे की बदनामी इस कदर हुई कि यहाँ के हर नागरिक को शक की निगाहों से देखा जाने लगा। मुस्लिम समाज के वयोवृद्ध हनीफ शुबाब कहते हैं,
देखिए, भटकल के नाम के साथ जो टेररिज्म का टैग लगाया गया है, यहाँ पे लोकली भी और यहाँ से ट्रैवल करके बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि लोग शक की निगाह से देखते हैं। कोई भी ये कहता है कि मुसलमान है और भटकल का है तो टेररिस्ट है, और डायरेक्टली रियाज भटकल, यासीन भटकल के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है, उसी नज़र से देखा जाता है। तो लोग ये महसूस करते हैं कि हमें कहीं भी जाते हुए अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए, भटकल बताते हुए डर लगता है।
इस इलाके में सबसे पहले अरब से नवायत मुसलमान आकर बसे थे, जो व्यवसायी थे और उनके पास खूब पैसा हुआ करता था। मगर आज मुसलमान खुद को एक शक के कटघरे में खड़ा हुआ पाते हैं।
देखिए साहब, यासीन भटकल हो या रियाज भटकल हो, जब तक कोर्ट से कन्विक्ट नहीं होता किसी को हम टेररिस्ट कह ही नहीं सकते। ये मीडिया में हाईलाइट किया गया, अब ये लोग क्या किए हैं क्या नहीं कि हमें उसे पता नहीं। अगर किए हैं तो कानून है अपना काम करेगा, उसे हमें कोई लेना देना नहीं। वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग द टेररिज्म और न हम उनके साथ पैटर्नाइज करते हैं।
मोहिमीन इंजीनियरिंग के छात्र हैं और भटकल के रहने वाले हैं।
देखिए, मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और हमें बहुत सारे मीडिया फेस्ट या मैनेजमेंट फेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो कहीं मौका मिलता है तो हम बाहर जाते हैं, तो हम जब बोलते हैं कि हम भटकल से हैं तो एक अलग नजरे से हमें देखा जाता है, हमको इग्नोर किया जाता है।
कभी भटकल की अलग पहचान हुआ करती थी। यहाँ के रहने वाले मुबशर कहते हैं कि लोग दूर दूर से भटकल की बिरयानी की वजह से आया करते थे।
भटकल में जो खास चीज़ है, भटकल की बिरयानी है, भटकल का हलवा है, और भटकल में खास इम्पॉर्टेंट जो है, यहाँ पर जो एनआरआई लोग जो यहाँ पर बसते हैं उनकी तरफ से ये भटकल का जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये बहुत उनकी बड़ी
रेमिटेंस से जो पैसा आता है,
जो पैसा आता है।
ऐसा नहीं है कि भटकल में सिर्फ मुसलमानों की आबादी है, यहाँ बड़ी तादाद हिंदुओं की भी है, और इन्हीं में से एक हैं वरिष्ठ चिकित्सक रमेश वेंकटेश सराफ।
जो पिक्चर हम सुने हैं वो कम्प्लीटली रॉन्ग। अब इधर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है इधर ट्रांसफर हो, इधर जब इधर ट्रांसफर होते तो इधर आने को डरते। और तुम्हें एक बताता मैं, जब इधर आके 6 महीना रहते, बाद में इधर ही और एक जगह लेके होम कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन करके कायम रिटायर्ड इधर ही छोके इधर ही रहने को चाहते।
डॉक्टर सराफ कहते हैं उन्हें मुसलमान समुदाय के लोगों से ज़्यादा सम्मान मिलता है।
1993 में इधर जब कम्युनल राइट हुआ, उस वक्त हम 9 दिन तक कंप्लीट कर्फ्यू सफ़र किया है। वो सफरिंग इधर का और किसी को भी, हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, किसी को भी वो सफरिंग और न को, क्योंकि मैं डॉक्टर हुआ तो भी मैंने मार खाया है पुलिस के पास।
डॉक्टर सराफ की तरह ही यहाँ के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल एन नरसिंह मूर्ति भी हैं, जो सिर्फ 6 साल पहले ही भटकल आकर बसे।
भटकल बोलते वो रूम देना सोचता है, गेट योर आईडी कार्ड बोलता है, और रूम नहीं है, जरा वेट करो। अरे मैं प्रिंसिपल हूँ, आई हैव कम फॉर एन ऑफिशियल, वो कुछ भी रहेगा, रूम नहीं है बोलता। पहले हाई करके बोलने वाला, मैं भटकल बोलते ही वो जरा सोचने शुरू कर।
आज भी ऐसी रस्में हैं यहाँ के समाज में जिन्हें हिंदू और मुसलमान मिलकर मनाते हैं, जैसे रथ यात्रा जो मुसलमानों के इलाके से शुरू होती है और इसे हिंदू मनाते हैं। भटकल में 1993 में दंगा हुआ था, मगर उसके बाद आज तक यहाँ के समुदायों के बीच भाईचारा ही रहा है। भटकल के मुसलमान हो या हिंदू, हर कोई इस बदनामी से छुटकारा चाहता है। सलमान रावी, BBC, भटकल, कर्नाटका।
सलमान रावी की रिपोर्ट पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। उधर दलित संगठनों की अपील पर हुए भारत बंद के दौरान ग्वालियर में हिंसा हुई थी। इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति पिस्तौल चलाता हुआ नजर आ रहा था। इस तस्वीर का पूरा सच क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आएं bbchindi.com पर और पढ़ें फैसल मोहम्मद अली की स्पेशल रिपोर्ट। और अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ सूर्यांशी पांडे।
जी हाँ, सूर्यांशी आज मेरे साथ हैं। और लेकिन सूर्यांशी, आज इससे पहले कि आप चिट्ठियां शुरू करें, कि आपकी इजाजत अगर हो तो मैं एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूँ।
आपने बोला और ऐसा होना, ये हो नहीं सकता है।
तो एक चिट्ठी है जो मैं नाम बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन वो लिखते हैं कि महोदय, जब किसान थका हारा दिन भर का शाम को चारपाई पर लेटकर बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम सुनता है तो दिन भर की थकान उतर जाती है। इन्होंने आगे लिखा है, गेहूं की फसल अब पकने लगी है, गेहूं की बालें अब सुनहरे रंग की हो गई हैं, तथा एक सप्ताह बाद गेहूं के खेत सोने के रंग के समान नजर आने लगते हैं, मानो पृथ्वी के गेहूं के खेत सोने रूपी हो गए हों। छोटे मध्यम किसान खेत में सारी जमा पूंजी पूरी खेती की लागत में लगा देते हैं और साल भर का अनाज, घर का खर्च, दवाइयां, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, सब खेती पर निर्भर रहती है। अब ये आप कहेंगे कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बीबीसी के कार्यक्रम से तो इसका कोई संबंध सीधा नहीं है, लेकिन इसलिए इसका संबंध है कि एक किसान ने हम पर इतना भरोसा किया कि अपनी व्यथा या अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे साथ वो बांट रहे हैं। ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं जो हमेशा पोस्टकार्ड लिखते हैं, और एक नहीं दस दस बीस बीस पोस्ट कार्ड लिखते हैं, अंतरदेशी लिखते हैं। ये असद अली इनका नाम है और ज़िला रामपुर उत्तर प्रदेश से, और हमेशा ये खेती किसानी की बात करते रहते हैं जो मुझे बहुत पसंद आती है। असद भाई, कई बार हम आपकी चिट्ठियां शामिल नहीं कर पाते हैं, नाराज़ मत होइएगा, लेकिन खेती किसानी के बारे में हमें ज़रूर बताते रहिए। हाँ,
तो राजेश जी, ये शब्दों की जो इतनी सुंदर बेला के बाद अब यहाँ पर एक रंगीन खत की तरफ चलते हैं। तो ये खत लिखा है सरदार शहर से, चूरू राजस्थान से, और ये लिखा है किशन लाल जी ने। तो ये यहाँ पर पहले एक कविता लिखते हैं कि हंस के दुनिया में मरा कोई, कोई रोके मरा।
क्या बात है, हंस के दुनिया में मरा कोई,
कोई रोके
कोई रोके मरा।
तो जिंदगी पाई मगर उसने जो कुछ हो
के मरा। वाह, क्या बात है। अच्छा, लेकिन ये किस संदर्भ में लिख रहे हैं, क्या लिखा है इन्होंने?
ये इन्होंने बीबीसी के कार्यक्रम के संदर्भ में लिखा है, और उन्होंने बोला कि ये जो कार्यक्रम है काफी ज्ञानवर्धक और रोचक रहते हैं, और वसतुल्ला खान की डायरी के बारे में भी इन्होंने काफी तारीफ की है। और ये लिखते हैं कि जो शाम का कार्यक्रम है ना, वो एक घंटा कर दिया जाए,
एक घंटा कर दिया जाए। किशन लाल जी, हमारे तमाम श्रोता इस तरह की गुजारिश करते हैं कि कार्यक्रम का समय बढ़ा दिया जाए। फिलहाल तो वो संभव नहीं है, लेकिन आपकी चिट्ठियां लगातार आती रहेंगी और हमें कार्यक्रम करने की और बेहतरीन कार्यक्रम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुकून की बात है।
और ये दूसरा खत भेजा है अशोक कुमार ठाकुर ने, और ये लिखते हैं दरभंगा बिहार से। इन्होंने लिखा है कि ये संध्याकालीन सभा में जो प्रसारित कार्यक्रम दुनिया जहां में श्रीलंका गृह युद्ध के बारे में जो जानकारी दी गई वो काफी ज्ञानवर्धक थी, और इन्होंने आदर्श राठौर जी की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया जहां में जो जानकारी दी गई वो काफी पसंद आई उनको।
जी, आदर्श राठौर जिस तरह से दुनिया जहान करते हैं उसको हमारे तमाम श्रोता पसंद करने लगे हैं, तो यही कोशिश हमारी जारी रहेगी।
बिल्कुल, ये जो है ये खत लिखा है जयंत कुमार दास ने, ये लिखते हैं बेलवा कटिहार बिहार से, और इन्होंने लिखा है कि 8 मार्च के दिन भर में जनाब रिहान फजल की प्रस्तुति, जो मशहूर शायर और अदबी दुनिया के महान हस्ती साहिर लुधियानवी के 98वीं जन्मदिन पर जो प्रस्तुति थी वो उन्हें बेहद पसंद आई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि रिहान फजल की आवाज उन्हें हमेशा से, जिसे कहते हैं ना, मोहित करती है।
हम सबको मोहित करती रहती है, और आजकल तो आप जानते ही हैं कि रिहान फजल पहुंचे हुए ऑस्ट्रेलिया।
तो ये चिट्ठी लिखी है रजत कुमार जी ने, जो बरेली उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि कंप्यूटर के दुष्परिणाम पर विवेचना प्रस्तुत करनी चाहिए।
क्यों, कंप्यूटर के दुष्परिणाम हो सकता है बहुत से हों, लेकिन इन्होंने लिखा है कि 1985 में राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, इससे बेकारी, बेईमानी, व्यभिचार, अपराध वृद्धि हुई है। भाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है रजत कुमार जी कि आप कंप्यूटर से इतने नाराज क्यों हैं। कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है, जैसे पहले गाड़ियां आई, हवाई जहाज आए, मोबाइल फोन कंप्यूटर सब आई है, तो इस पर विवेचना की जा सकती है, लेकिन दुष्परिणाम ही हो ये तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी बात है तो हम उसको तो स्वीकार कर रहे हैं।
तो ये पहला ईमेल जो है वो हम पढ़ेंगे आसिफ करीम जी का, जो फौलाद तारा शिम्स अरतकान ईरान से लिखते हैं। ये लिखते हैं कि दुनिया जहां में चीन अमरीका के आर्थिक टकराव जैसे संवेदनशील विषय को जिस सहजता और सलीके से संदीप सोनी ने पेश किया उन्हें बहुत पसंद आया। साथ ही ये लिखते हैं कि राजेश जोशी साहब के हाथों में संचालन की कमान हो और समय ठहर जाए, मुश्किल है।
समय को तो ठहरना नहीं होता, समय किसी के लिए नहीं ठहरता, चाहे मैं संचालन कर रहा हूँ या कोई और, समय तो बीतता है। बहरहाल, आपने इतनी हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ।
फिलहाल मुझे लगता है सूर्यांशी, अब हमें कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं है। चलते चलते हमेशा की तरह पता बता देता हूँ, हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
दिन भर में भी वक्त विदा लेने का हो रहा है, लेकिन मुख्य समाचार एक बार फिर आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। जोधपुर की अदालत ने दो चिंकारा का शिकार करने के मामले में सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। शिकार की यह घटना 26 सितंबर 1998 की है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिम में एक विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए सभी लोग एसके शहर की ओस्मान गाजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजे जाने की दिशा में कोई प्रगति न होने पर हताशा जताई है। इसराइल के रक्षा मंत्री एविगडर लाइबरमैन ने कहा है कि सैनिकों को दिए गए आदेश वापस नहीं लिए जाएंगे। इन सैनिकों की गोली से पिछले शुक्रवार को गजा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे 17 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि लेफ्ट विंग से संबंध रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा को भ्रष्टाचार के मामले में मिली 12 साल की सजा भुगतनी ही होगी। स्पेन के हाईकोर्ट से अभियोजनकर्ताओं ने मांग की है कि टैक्स चोरी का खुलासा करने वाले पूर्व बैंक कर्मचारी को अपने संरक्षण में लिया जाए। उनके खुलासे के बाद ही कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का मुकदमा चला था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजित सारथी और कपिल देव सिंह। फेसबुक प्रसारण में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।